सभी को राम राम। स्वागत है मनोका इंडियन एफएम के यहाँ प्रसारण में। मैं हूँ आपका साथी प्रनील शतगन। दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि सभी कुछ अच्छा चल रहा है। तो हमारे प्रसारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप मनोका इंडियन एफएम के बारे में हमको कुछ जानकारी दें, हमको कुछ बताएं। तो बात यह है कि पहले मैं जो हमारा संस्था यह है मनोका इंडियन एफएम, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कुछ बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जानकारी जो है वो आपके साथ में बांटना है। बहुत सारा जानकारी जो है हमारी वेबसाइट में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यह सब को निचोड़ कर एक ये जो आधा घंटा है उसमें बताने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो मनोका इंडियन एफएम आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में कि जो उनका जो हमारा लोगो है उसमें श्री गणेश जी हैं, विघ्न विनायक श्री गणेश जी। और हमारा जो विजन है, हमारा दृष्टि यह है कि हम अपने समाज को जोड़ें अपने भारतीय संस्कृति, अपने हिंदू संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जोड़े अपने समाज को। क्योंकि हमारा समाज आप देखते हैं कि कई लोग इसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हमारा यह लक्ष्य यह है, दृष्टि यह है, विजन यह है कि हम समाज को जोड़े। और आपने देखा होगा कि जो हम अपना जो प्रसारण है या किसी भी जगह पर अपना जो वक्तव्य है, अपना जो स्पीच है, उसका जो भाषण है, जो हम उसका शुरुआत करते हैं, वो हम शुरुआत करते हैं राम राम से। राम राम हम बोलकर उसके बाद हम स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का, या कुछ भी जो स्पीच है हम देते हैं, लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो राम नाम, भगवान के नाम से। और हमारे अयोध्यापति श्री राम, वो तो भारत के सबसे बड़े राजा हुए थे, उसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, राक्षसों का वध किया, रावण का संहार किया, त्रेता युग के उस समय जो धरती पर पीड़ा था उसको दूर किया, वो तो किया ही किया, लेकिन भारतवर्ष के सबसे बड़े राजा वही थे। और हमारे जो लोग आए हैं भारत से, जो फिजी गए हैं और भी जगह पर गए हैं, वो ज़्यादातर अयोध्या के आसपास के थे। और जो दूर के भी लोग हैं, अयोध्या के आसपास ना भी थे, लेकिन वे फिर भी सभी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से ही उनका शुरुआत है। और इसी कारण से अब भगवान राम को वो मानते हैं, हम सब मानते हैं भगवान श्री राम जी, उसका नाम लेकर हम आरंभ करते हैं। तो ये जो रेडियो स्टेशन है मनोका इंडियन एफएम, एक रजिस्टर्ड चैरिटी है। जी हाँ, रजिस्टर्ड चैरिटी है। अब मैंने उसका जो दृष्टि है, विजन है, उसको बता दिया है। और ये रजिस्टर्ड चैरिटी है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर manukaoindianfm.nz, जी हाँ manukaoindianfm.nz, वहाँ पर जाकर आप हमको जो आपसे बन पड़ सके डोनेशन। जो सभी को राम राम, स्वागत है मनोका इंडियन एफएम के इस लाइव प्रसारण में। बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप हमको सुन सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव के ज़रिए, और आप हमको सुन सकते हैं अभी लाइव। हम जा रहे हैं एफएम 104.6, जी हाँ 104.6 ओकलैंड वाइड, ये जो ट्रांसमिशन है जा रहा है। अगर आप ओकलैंड में हैं और आप हमको हमारी वेबसाइट पर सुन रहे हैं या फेसबुक पर सुन रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स अपने एफएम रेडियो को चुन इन कर सकते हैं, और वहाँ पर 104.6, जी हाँ 104.6 वहाँ पर आप हमको सुन सकते हैं। तो ये बात आपने आप जो दोस्त साथी आपके परिवार वाले उन तक पहुँचाइए, क्योंकि मनोका इंडियन एफएम जैसे आप अभी कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम जो अपने समाज है उसको हम जोड़ना चाहते हैं अपने भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं आपका साथी प्रनील। तो आप हमको वेबसाइट पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर, और इसके बाद जो ये जो रिकॉर्डिंग जाएगा वो एप्पल स्पॉटिफाई पॉडकास्ट वहाँ पर जाएगा, प्लैनेट एफएम उनके वेबसाइट वहां पर भी जाएगा और हर शाम जी हां हर शाम सोमवार को 6 बजे पूरे ओकलैंड वाइड ये जो ट्रांसमिशन है ये जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि हम जो है वो रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, जी रजिस्टर्ड चैरिटी हैं और हमारे पास अभी कोई परमानेंट स्पॉन्सर नहीं है। तो अगर आप हमको स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट वहाँ पर आप जाकर हमको डोनेशन इत्यादि आप जब भी आपसे बन सके वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर बहुत सारा जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है वहाँ पर है, वहाँ पर आप जाकर उसको सुन सकते हैं। तो उसके साथ साथ कई सारे जो जानकारी मैंने आपको बताया अभी कुछ दिनों से जो हम करते आ रहे हैं, तो एक जो विषय है हमने नहीं बतलाया है वो है गिरमिट। जी हाँ, गिरमिट के बारे में बहुत सारा जानकारी हमारे वेबसाइट पर है manukaoindianfm.nz। जी हाँ, manukaoindianfm.nz, वहाँ पर जाकर आप जो गिरमिट का पूरा इतिहास है वो आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमारा जो साउथ अफ्रीका गिरमिट डे था, मॉरिशस गिरमिट डे था, तो साउथ अफ्रीका में बहुत से भारतवासियों को ले गया गया था ब्रिटिश राज द्वारा, मॉरिशस में बहुत ज़्यादा ले गया गया था, फिजी में तो था ही था और उसके साथ साथ कैरेबियन जो कंट्रीज था वहाँ पर भी ले गए गए थे। तो अभी कुछ दिनों में हमने रखा है जो जितने भी शिप्स को फिजी ले गया गया था उनका पूरा लिस्ट हमने रखा है। एक दो मुख्य शिपिंग कंपनीज थी और जो बाद में फिर P&O क्रूजर्स हो गई उनके बारे में हमने रखा है कि ये ज़्यादातर जो शिप्स है उसको चलाते थे। और मैं जबकि इस क्षेत्र में हूँ तो अपना जो रिसर्च हमने किया है, अपना पर्सनल स्टोरी उसमें डाला है, किस प्रकार मेरे पराजा जो है परदादा वो किस प्रकार से आए थे और फिर उसका किस प्रकार से जीवन व्यतीत हुआ। उसके साथ साथ जो यहाँ पर ओकलैंड शुगर मिल, शुगर फैक्ट्री है, उसका क्या संबंध था, वो भी पूरे फुली इन्वॉल्व थे। तो उनका क्या संबंध था ये फीजी ऑस्ट्रेलिया जो गिरमिट हो रहा था, जितना सब चीनी वो वहाँ से ला रहे थे यहाँ पर ओकलैंड, यहाँ पर चीनी बनाकर पूरे ओकलैंड न्यूजीलैंड में वो बेचते थे, ये सब भी पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और भी वेबसाइट्स पे ये आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे जो गिरमिटिया है, पहले गिरमिटिया उनको रामबी आइलैंड ले गया गया था और उसके साथ साथ गिरमिटिया सर्च भी मौजूद है हमारे वेबसाइट पे, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं अगर आप अपने परिवारजन को खोजना चाहते वहाँ पर कि आपके कौन आया था, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी इमिग्रेशन पास है, जी हाँ 61,000 जो इमिग्रेशन पास है वो भी वहाँ पर हमारे वेबसाइट manukaoindianfm.nz वहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ गिरमिट वीडियोस, बुक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज, जी हाँ बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन अभी हम जुड़ेंगे अपने साथी प्रवीण जी से कुछ देर में, तो आपने देखा होगा कि एक कनाडा की प्रोफेसर, जी हाँ कनाडा की प्रोफेसर डोनिका बेलिसले, जी हाँ कनाडा की प्रोफेसर है, वो अभी हाल ही में फिजी गई थी अपना रिसर्च करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने रिसर्च किया, वहाँ पर अपना एकेडमिक पेपर लिखा और अभी प्रवीण जी ने मुझे बताया था कि उसने एक जो एकेडमिक पेपर लिखा है उसमें उसने मुझको और प्रवीण जी को उसने रेफरेंस किया था एज एन एक्नोलॉजमेंट की वो हमसे कई सारा जो जानकारी है उसने सीखा था। तो हम अभी क्या करेंगे, कुछ देर में हम जुड़ेंगे अपने साथी प्रवीण जी जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे कुछ देर में, तो वो हमको बतलाएंगे कि ये जो सिलसिला है और उसका और जो रिसर्च है वो किस प्रकार से जा रहा है। तो अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, तो प्रवीण जी से भी यह संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गिरमिट जो हिस्ट्री है उस पर रिसर्च करते हैं जी। ना लग रहा है कि प्रवीण जी बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम कुछ देर बाद और फिर उनसे जुड़ेंगे। तो गिरमिट से रिलेटेड, गिरमिट की बात हम हमेशा करते क्यों हैं कि ये कई लोग सोचते हैं कि केवल फिजी का इतिहास है, या जिन लोगों को और भी जगह साउथ अफ्रीका कैरेबियन में ले गया गया था उनका इतिहास है, लेकिन वैसा बात नहीं है, बात वैसा बिल्कुल ही नहीं है। ये पूरा भारत का, पूरा पूरा हिंदुस्तान का इतिहास है। ये हम सब का, पूरे भारत वर्ष में जितना भी भारतीय, उन सभी का इतिहास है। क्विक टू पिक करेगा, हाँ, दे कैन डू दैट। तो मैं हमारी एक और साथी अपूर्वा जी यहाँ पर आ चुकी स्टडीज में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ समय देना, मैं उनको अभी जोड़ने की कोशिश करूँगा।
राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, नमस्ते।
अच्छा, प्रवीण जी से मैं जोड़ लूँ फर्स्ट। हाँ, तो अभी हम प्रवीण जी से जुड़ते हैं। उससे पहले जो फेसबुक का जो है वो मैं सिर्फ कर लूँ। जी हाँ, तो अभी कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज था हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी स्टूडियोज़ में हमारे साथ पूर्वा जी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अभी प्रवीण जी हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हम उनसे भी जुड़ते हैं। प्रवीण जी, आप लाइन पे हो?
जी हाँ।
तो आपको राम राम और स्वागत है मनुका इंडियन एफएम में।
धन्यवाद।
तो अभी आप जो मैं कह रहा था हमारे लिस्टनर्स से भी, कि कनाडा के जो प्रोफेसर है डोनिका जी, उसने एक अभी पेपर लिखा है और हमको रेफरेंस किया था, उन्होंने एक्नॉलेज किया था, और हम अपने जो मैं और आप है अपना जो डिस्कशन जारी रखते हैं, और कई सारा गिरमिट का काम हमने किया है। तो ये जब कनाडा की जो प्रोफेसर ने हमको रेफरेंस किया, आपको कैसा लगा?
बहुत खुशी की बात है कि डोनिका ने हम लोग को ख्याल किए, अपने जो रिसर्च किए वो, और जनता को ये हम लोग बताना चाहते हैं कि डोनिका, जब मैंने ग्लोबल गिरमिट कॉन्फ्रेंस सुबह में मई में गया था, तो उसने फिजी आई थी लगभग 4 हफ्ता के लिए, और वो पहला समय मुझे मालूम पड़ा कि जो नावा में एक बड़ी सी शुगर मिल था, वो वैंकूवर शुगर मिल था, और बहुत सारे गिरमिटिया लोग वो गन्ने के मिल के लिए काम करते थे
जी।
और एक दिन वो वैंकूवर शुगर मिल वो लोग वैंकूवर में ये डिसीजन बनाए
जी।
कि मिल तुरंत जो गन्ना के बैसार था नावा में कि वो तुरंत बंद कर दे। तो जब वो न्यूज जब वो गिरमिटिया लोग को जब वो बतलाए एक मीटिंग में तो जो जितने किसान थे वो बहुत घबरा गए, वो बहुत सोच में पड़ गए कि क्यों क्या अब होगा उनका गन्ने का वैसार के बारे में, क्योंकि काफी लोग गन्ना तैयार कर लिए थे काटने के लिए आने वाले साल के लिए
जी। हाँ बोलते रहिए।
तो अभी भी वो जो डानी का प्रोफेसर है वो अब उसको काम और वो बढ़ा रही है और मेरे ख्याल से लगभग आने वाले साल में लगभग अगस्त सितंबर में वो अपना जो पुस्तक है वो तैयार हो जाएगा
जी।
और उसमें और भी बहुत वो गन्ने के वैसार के बारे में और कैसे ब्रिटिश लोग और गोरे लोग ये स्लेवरी सिस्टम में और भी देश में कैसे वो गन्ना बोए और कितना ज्यादा प्रॉफिट वो वैंकूवर शुगर मिल ने बनाया और जो कनाडा के सबसे भारी शुगर रिफाइनिंग कंपनी एक कंपनी है रोजस जो शुरुआत हुआ था मेरे ख्याल से 1850 या 1860s में
जी।
और अभी भी रोजस एक बहुत बड़ा शुगर रिफाइनिंग कंपनी कनाडा में है अभी तलक।
हाँ हाँ जिस प्रकार से यहाँ पर अभी भी जो ओकलैंड शुगर रिफाइनरी वो भी चल रहा है, भले ही उनका ओनर्स जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है जैसे जो शिपिंग कंपनी के साथ हुआ, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ फिजी का इतिहास है या जो सिर्फ गिरमिटिया कंट्रीज का इतिहास है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि ये इंडिया का इतिहास तो है लेकिन ये ग्लोबल हिस्ट्री इज़न्ट इट।
जी हाँ, अगर जो हम देखें तो जो डानिका जो पुस्तक लिखेगी
जी
वो कनाडा में वैंकूवर से ऊपर लगभग 5 घंटा अगर जो आप लो
जी
तो बहुत दिन वहां पर चीनी बनाया जाता था शुगर बीट बोकर और उस समय वहां पर बहुत सारे लोग कनाडा गवर्नमेंट मेक्सिको से लेबरस को ले गए, जापान से कुछ लेबरस को लेके गए और उनको बहुत खराब से वहां पर ट्रीटमेंट किया गया लगभग मेरे ख्याल से 50 साल से ज्यादा। उनका रहने का जो क्वार्टर्स था जो जिस तरह से वो काम कराते थे जिस तरह से वो तलब देते थे उनको वो बहुत बुरा था
जी।
तो वो भी वो पुस्तक में अपना जो रिसर्च है उसमें वो शामिल करेगी कि उन लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट उस समय पर कितने खराब से ये लोगों को वो ट्रीट किए थे। और फिर वो और एग्जांपल भी वो लिखेगी कि जो डोमिनिकन रिपब्लिक जो गियाना और सुरीनाम के बगल में है साउथ अमेरिका में द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी बहुत ज्यादा गन्ना अभी भी उगाया जाता है तो वहां से भी जो चीनी था वो रोजस शुगर रिफाइनरी वहां से चीनी लेके जाकर वैंकूवर में रिफाइन करता था और उस पे वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट बनाते थे। तो इस तरह से जो ये गोरे देश थे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या बोलते हैं लेबर को एक्सप्लॉइट कर कर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाए, क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट जिसको बोलते हैं।
जी 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 जी
जी हाँ,
तो वो तो दर्दनाक इतिहास है। और जैसे हर हफ्ता जो हमारा जो ब्रॉडकास्ट अब शुरू हो गया है वो हम वहाँ पर अपना जो डिस्कशन है वो तो ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन अभी आप ओकलैंड वाइड एफएम पर हो, आपको कैसा लग रहा है?
तो अभी तो जब से पर्नील हम और आपका मुलाकात हुआ मैसेंजर से और फेसबुक से और फोन से तो हम लोग बहुत से काम किए हैं
जी।
और आपने मेरे दो जो तव्यूनी शुगर मिल के जो आप डॉक्यूमेंट्री बनाए हिंदी में और इंग्लिश में
जी।
फिर उसमें मैंने कुछ राम बियाल एंड लियोनी दास गिरमिटिया के बारे में भी दो प्रोडक्शन मैंने किया और वो अब यूट्यूब पे और फेसबुक पे और कुछ जगह पर है
जी।
लेकिन अभी और काम हो रहा है और जैसे कि बहुत लोग शायद नहीं जानते कि वनवा लेवू में कहाँ पर पहला गिरमिटिया लोग को ले गए थे
जी।
वो काम भी मैं काफी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन में मैं विचार कर रहा हूँ कि शायद एक या तो दो घंटे का डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया जाएगा और हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, और उसके लिए तो मुझे काफी कुछ धन बटोरना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगभग शायद दो हफ्ता नंबुआलू वाइनुनू में रहना पड़ेगा तब वो काम होगा।
अच्छा, आज के लिए तो इतना ही समय था, धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर आपसे जुड़ेंगे।
बहुत धन्यवाद पटेल जी, फिर हम बात करेंगे।
तो अभी अपूर्वा जी हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, तो अपूर्वा जी अब आप ओनिया है, अब आप अपना जो बात है आप शुरू कर सकते हो।
राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका जो सपना था वो अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इतने दिन के ब्रेक के बाद मैं फिर से वापस हूँ मनेगांव इंडियन एफएम पर। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो अपने लिसनर्स के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा के महल में कुछ अतिथि आते हैं, और वो अतिथि उस राजा को एक बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर तोहफे में देकर जाते हैं। राजा अपने मंत्री को कहता है कि क्यों ना इस पत्थर से हम विष्णु जी की मूर्ति को बनवाएं, और जो भी मूर्तिकार इस पत्थर को विष्णु जी की सूरत में बदल देगा, मैं उसे 50 सोने की सिक्के दूंगा। तो मंत्री अपने राजा के आदेश अनुसार उस पत्थर को मूर्तिकार के पास ले जाता है। तो वो मूर्तिकार एक बार तो सुनकर खुश हो जाता है, अरे वाह, मुझे 50 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तो वो बहुत ही उत्साहित होकर उस मूर्ति के ऊपर अपना जो है कार्य शुरू कर देता है। करते करते, कोशिश करते करते, सुबह से शाम, शाम से रात, और रात से फिर अगला दिन चढ़ जाता है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। हार कर वो मूर्तिकार कहता है कि नहीं, बस अब मुझसे नहीं होगा, और वो निराश होकर उस पत्थर को राजा के दरबार में वापस ले जाता है। अब क्योंकि मंत्री को ये आदेश मिला होता है, तो मंत्री किसी दूसरे एक आम से मूर्तिकार के पास चला जाता है, और जब वो आम से मूर्तिकार के पास जाता है तो देखिए वो मूर्तिकार एक ही हथौड़ा मारता है और जो पत्थर है वो टूट जाता है
जी।
और इससे हमें जो एक लेसन मिलता है ना, वो लेसन ये मिलता है, स्पेशली आजकल की जो यूथ में जो पेशेंस की कमी है, वो कि वो हजार बार कोशिश करेंगे अपने एम को पाने के लिए, लेकिन जब पाने वाले होते हैं ना, वो तभी हार मान जाते हैं। और कई कहानियाँ, वो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो किसी की जीवनी बन जाती हैं, और इस कहानी में मेरे को आपकी जीवनी नज़र आती है। वो इस प्रकार, आपने एक फेसबुक पेज से शुरू किया था कोरोना के टाइम पर, पर आपने हार नहीं मानी और अपने उस एम को आपने एक आज रूप दिया कि आज हम स्टूडियो में बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपकी जो लाइफ है एक बहुत इंस्पिरेशनल पार्ट है, जो हमें ये सिखाती है कि लाइफ में सपना देखो, पर उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी रखो। ये नहीं कि आधे में आकर छोड़ दो, आपको नहीं पता कि क्या पता एक और जो कदम है वो आपके सपने को जो है हकीकत में बदल दे।
जी, बहुत बहुत खूब आपने कहा, और फेसबुक लाइव से हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि ये जो पूरा प्रोपा प्रोफेशनल स्टूडियो है यहाँ पर है, और यहाँ भी माउंट एल्बर्ट से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो लेकिन एक दौर हम न्यूज़ आपसे शेयर कर दें कि अभी हमारा मनेगांव में स्टूडियो एक तैयार हो जाएगा बहुत जल्द, जनवरी में, जनवरी एंड में। और अभी जो है हफ्ता में एक बार मंडे को 6 बजे हम 104.6 ये फैसिलिटी हमको दिया गया है प्लैनेट एफएम द्वारा, तो 104.6 हर मंडे को 6 बजे आप अपने एक्चुअल एफएम जो है रेडियो को ट्यून इन कर सकते हो पूरे ऑकलैंड वाइड में, तो वहाँ पर आप हमको सुन सकोगे। तब डेफिनेटली जो पूरा आपने बहुत अच्छा कहा कि हाँ शुरू तो हुआ था फेसबुक पेज से, फिर वेबसाइट से। इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया, लेकिन काफ़ी इमोशनल ऐसे टॉपिक है ना, क्योंकि मैंने शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो है मंडली से, तो कीर्तन भजन का मंडली हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम अपना रेडियो खोलते थे तो हमको कुछ और सुनने को मिलता था, तो मैं चाहता था कि हमको कीर्तन भजन हमारे धार्मिक विषय इसको हम सुने रेडियो पर भी। तो अब ये धीरे धीरे हो रहा है, वेल वेबसाइट पर तो चल रहा है 24/7, लेकिन अब हम एक्चुअल स्टूडियोज़ में आ गए, जिसे उस रोज मैंने हॉल में कहा। और ये तो बात की बात है, जो यूथ का जो आपने कहा, तो मैं अपना थोड़ा सा इसमें स्टोरी शेयर कर दूँ। 6:30 बजे तक समय है हमारे पास। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2008 में कंप्यूटर साइंस में, तो उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस था, और जब उस समय आप जाते थे किसी जगह नौकरी अप्लाई करने के लिए, तो वो बोलते थे कि सॉरी वी नॉट हायरिंग, हम नहीं हायर कर रहे क्योंकि इतना भारी रिसेशन चल रहा है ना। तो उस समय भी मैंने हार नहीं माना, अप्लीकेशन के पूरे अप्लीकेशन डालते रहा 100 से ज़्यादा, और ना जाने अनगिनत इंटरव्यूज़ मैंने किया अनगिनत। और एक ऐसा समय आ गया था कि मैंने इतना इंटरव्यू मैच कर चुका था, मैं आई वॉज लाइक फुली कॉन्फिडेंट, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था ना, और मैं जान जाता था कि जब पैनल वाला जो है अगर उसका फेस्ट इंटरव्यू है या वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं जान जाता था ये बात, क्योंकि मैंने इतना इंटरव्यू मैंने कर चुका था। तो आप अपने जो ग्रेजुएशन का यूथ का नौकरी का सिलसिला, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी?
बिल्कुल सही बात है प्रनिल जी, हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं सिर्फ एक दो इंटरव्यूज देकर ही कि नहीं अचीव कर पा रहे, इतना इन्वेस्ट किया बट नहीं कुछ मिल रहा। पर ये ऐसा नहीं होता, हर किसी की लाइफ में ही कोई 200 बार जॉब अप्लाई करता है, कोई 300 बार करता है। तो ऐसी ही कहानी मेरी है कि डायरेक्टली ही मैं अपनी फील्ड में नहीं चली गई, मैंने फ्लोर पे काम किया, एज अ लेबर काम किया, और मैं उस चीज़ को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि आज मैं जो हूँ वो उन्हीं चीज़ों की वजह से हूँ जो मैंने उस टाइम सीखी
जी।
तो कभी भी स्पेशली आजकल की जो हमारी यूथ है, जो हमारे अपकमिंग जो ऑफिसर्स बनेंगे या जो स्टूडेंट्स जस्ट यूनिवर्सिटी पास आउट हो रहे हैं, तो हार नहीं माननी, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। एक इंटरव्यू फेल होगा, 100 इंटरव्यू फेल होंगे, पर एक सीट आपके लिए ज़रूर बनी होगी और उसे कोई नहीं ले सकता, कोशिश करते रहो।
बहुत खूब बहुत खूब। ये जो डिप्रेशन का भी आपने कहा, डिप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल, क्योंकि हाँ कई लोग डिप्रेशन डिप्रेस्ड हो जाना, मतलब कि मानसिक तौर पर एकदम डाउन हो जाना ना, और फिर उससे फिर बाहर नहीं निकल पाना। आई मीन ये इस टॉपिक के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन देट इज़ हाउ द फन ना, कि स्पीकिंग ऑफ द कफ, मतलब बिना प्रिपरेशन के बात करना, वो भी एक कला है और इसको डेवलप करना चाहिए हर किसी को। और पब्लिक स्पीकिंग तो वैसे भी जो हमारे लोग नहीं करते उनको करना चाहिए जब जब आपको मौका मिले, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो एक बार ऐसा होगा कि आपको हज़ारों या 100 लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा, ये ऐसा आएगा जी, ऐसा आएगा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक ऑफ टॉपिक हो रहा, तो मैं डिप्रेशन के टॉपिक पे था जैसे आपने कहा। तो मैं जानता हूँ जब लोग यूथ खास करके या लोग वैसे भी जब स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो असर है वो दिमाग पर होता है ना,
होता है, बिल्कुल होता है,
डेफिनेटली होता है। तो मेरा क्या था कि क्योंकि मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ हारमोनियम ना, तो वो मेरा एस्केप था।
हाँ।
तो कई लोगों का किसी प्रकार का कुछ
जो भी एस्केप होना चाहिए, आप उसको अपनी हॉबी को मैं पार्टिसिपेट करके, पेंटिंग करके, म्यूजिक करके, अगर म्यूजिक नहीं भी प्ले करने आते इंस्ट्रूमेंट, तो कई लोग सिर्फ लिसनिंग से ही अपने आप को उस जो जोन से बाहर निकाल लेते हैं। और मैटर क्या करता है कि कहीं पे अगर आप गिर रहे हो और गिर के उठ रहे हो, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, फिर चाहे वो बहुत बड़ी है या छोटी। तो कभी नेगेटिव फील होता है तो हमेशा अपने आप को उस जोन से बाहर निकालो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उस चीज़ को छोड़ दो, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, और आपके
जी हाँ अपूर्वा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं अगले सप्ताह, जय श्री राम।